ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम सातवां स्कंद अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 7।
अस्तोषित हरि एकाग्र मनसा प्रेम कद गया वाचा तन्यस्त हृदय क्षण। अस्तोषित हरि एकाग्र मनसा सुसमाहिता प्रेम कद गया वाचा तन्यस्त हृदय क्षण। अस्तोषित हरि एकाग्र मनसा सुसमाहिता गया वाचा तन्यस्त हृदय क्षण।
धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की।
अस्तोषित
मैं प्रार्थना करने लगा हरिम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की। एकाग्र मनसा भगवान के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करके सुसमाहिता अत्यंत मनोयोग से प्रेम गद गदया दिव्य आनंद की अनुभूति के कारण बोल सकने में असमर्थ वाचा वाणी से तत्न्यस्ता और नरसिंह देव पर पूर्णतया समर्पित हृदय इक्षण हृदय तथा दृष्टि सहित। प्रहलाद महाराज ने पूर्ण समाधि में पूरे मनोयोग से अपने मन तथा दृष्टि को भगवान नरसिंह देव पर स्थिर कर दिया। तब स्थिर मन से अवरुद्ध वाणी से प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने लगे। तात्पर्य सुसमाहिता शब्द का अर्थ है अत्यंत ध्यान पूर्वक या पूर्णतया स्थिर होकर। योग सिद्धि के फलस्वरूप ही इस प्रकार मन को स्थिर किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम 12:13:1 में कहा गया है ध्याने वसिता गते न ध्याने वसिता तद गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिना। मनुष्य को योग सिद्धि तभी मिल सकती है जब वह समस्त भौतिक विक्षेपों से मुक्त होता है और जब उसका मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर हो जाता है। यह समाधि कहलाती है। प्रहलाद महाराज ने इंद्रियों से परे की अवस्था प्राप्त कर ली थी क्योंकि वे सेवा में लगे रहते थे। अतः वे अपने आप में अपने को अध्यात्म पद पर स्थित अनुभव करते थे। उनका मन तथा ध्यान स्वभावतः अध्यात्म में लीन रहता था। उस स्थिति में उन्होंने निम्न प्रकार से प्रार्थना करनी शुरू की। ओम अज्ञानस्य निरंधस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सचिवम साधवैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे
हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और विशेष स्वागत है हमारे विष्णु प्रसिद्ध के साईगुरु प्रभु का। हम सब लोग जो भक्त लोग इकट्ठे होते हैं और वैष्णव संघ का जो मुख्य उद्देश्य है या वैष्णव संघ में जो अर्च विग्रह है वैष्णव संघ का, वैष्णव संघ में एक डीटी है, वैष्णव संघ का जो अर्च विग्रह है वो है कृष्ण कथा। तो जब भी वैष्णव इकट्ठे होंगे तो उद्देश्य ये है कि इष्ट हमारे इष्ट क्या हुए कृष्ण कथा, कृष्ण कथा का हम अर्चना करें यानी कृष्ण कथा को हम श्रवण कीर्तन करें। तो आप सभी भक्तों से आशीर्वाद मांगते हो विशेषकर हाइग्री प्रभु से। आज के श्लोक में चर्चा करेंगे तो इस अध्याय का नाम है प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव को प्रार्थनाओं से शांत करना। नरसिंह भगवान जी प्रकट हो चुके हैं, हिरण्यकश्यप को उन्होंने वध कर दिया बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से, बिल्कुल दहलीज पे उनको रख के अपने गोदी में रख के और नाखूनों से उनको फाड़ दिया, ओपन हार्ट सर्जरी किया और फिर खुद ही उनकी आंतों को अपने लपेट लिया और उसके बाद भी पूरा खून खून फेंक गया, उसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं होता और पूरा ब्रह्मांड कांप रहा है और वहां पर उपस्थित हैं शिव जी ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी सारे देव और सब एक एक करके प्रार्थना कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं भगवान को, लेकिन भगवान शांत नहीं हो रहे। तो इसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने बोला कि भगवान जिनके कारण प्रकट हुए हैं वही उनको शांत कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज से निवेदन किया कि आप ही आगे जाइए और फिर प्रहलाद महाराज उनको प्रणाम करते हैं और जैसे प्रणाम करते हैं नरसिंह भगवान जी के चरणों को अपने हृदय में बंद कर लेते हैं और फिर नरसिंह भगवान बड़े प्रेम से उनको उठाते हैं और अपना कर कमल अपने हाथ प्रहलाद महाराज के शिर में रखते हैं और उससे बताया गया उनके सारे के सारे जो बचे हुए बौद्धिक कलमश थे वो नष्ट हो जाते हैं। और फिर प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान जी को देखकर बहुत गदगद होकर जैसे आज का श्लोक है वो प्रार्थनाएं शुरू करते हैं। तो आज के श्लोक में मुख्यतः मैं चार विषयों को टच करूंगा। सबसे पहले कि हमारे जीवन में एक साधक के जीवन में प्रार्थना के क्या महत्व है, दूसरा जो प्रार्थना है उसके क्या क्या अंग होते हैं, प्रार्थना का मतलब क्या है, और तीसरा ये प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना शुरू नहीं की लेकिन वो प्रार्थना के मूड में आ गए, प्रेफुल मूड में है। तो अक्सर हम ये शब्द सुनते हैं कि बड़ा प्रेफुल मूड में होना चाहिए, तो प्रेफुल मूड यानी कि प्रार्थना के लिए सही मूड क्या है ये, और चौथा कुछ आचार्यों की महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं। और अगर समय मिला तो हम लोग सब प्रार्थनाएं करते ही हैं तो कई बार हमारी प्रार्थनाएं सुन ली जाती हैं, कभी प्रार्थनाएं नहीं सुन ली जाती। तो जब प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्यों नहीं सुनी जाती प्रार्थना, तो क्या करना चाहिए अगर प्रार्थना नहीं सुनी गई। तो अगर समय मिला तो इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप इसे कह रहे हो नहीं पहले इस पर चर्चा कर ले लेकिन विषय अभी ये है कि क्या प्रेफुल मूड है तैलान महाराज का। तैलान महाराज महाजन है और हम साधारण जन है और महाजन धर्म के अधिकारी हैं, वो हमें सिखा रहे हैं कि प्रार्थनाएं कैसे करनी चाहिए और प्रार्थनाओं करने के लिए क्या चेतना क्या मूड होना चाहिए। तैलान महाराज की इस चेतना और मूड को समझने से पहले हम प्रार्थनाओं के महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। साधना भक्ति के 64 अंगों में वंदनम एक महत्वपूर्ण अंग है। नवदा भक्ति का भी 6 अंग वंदनम है और प्रत्येक साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब आप में से कितने भक्तों ने कभी भी प्रार्थना नहीं की? हो ही नहीं सकता। हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से हमें एक शक्ति मिलती है, एक आशा की किरण दिखाई देती है। एक संघर्ष करता हुआ साधक अपने अनर्थों के साथ जब वो प्रार्थना करता है उसको एक शक्ति का स्रोत मन चलता है, एक होप दिखाई देती है, आशा की किरण दिखाई देती है और उसको एक आश्वासन मिलता है। प्रार्थना करने से हमें भगवान का व्यक्तिगत रूप का साक्षात्कार होता है। हाँ, भगवान वास्तव में है, एक पर्सनल फॉर्म है और बिना इस साक्षात्कार के आध्यात्मिक जीवन खोखला है। निराकारवादी लोग भी प्रार्थना करते हैं लेकिन वो मालूम नहीं, वो कहते हैं भगवान का कोई नाम ही नहीं है। तो क्या प्रार्थना करते हैं? तुम वो हो, तुम वो हो, कौन तुम वो पता नहीं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है कि वो तो दिव्य स्तर पे है और हम जैसे भक्त जीवों को भगवान अवसर प्रदान कर रहे हैं कि हम उनसे संपर्क कर सके। प्रार्थना के माध्यम से हम प्रार्थना से बातचीत कर सकते हैं, अपना हृदय खोल सकते हैं भगवान के सामने। अब देखिए कितना विशेष कृपा है भगवान के ऊपर, भगवान से हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो प्रार्थना के माध्यम से हम भगवान के साथ एक रिलेशनशिप जो संबंध है स्थापना करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम प्रार्थना करें वैसे तो प्रतिदिन हम कम से कम 2 घंटे तो प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बोला गया इसको महामंत्र, ये वास्तव में महाप्रार्थना है। एक बार एक चर्च के पादरी ने प्रभुपाद से पूछा कि हमें भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रभुपाद ने उनको उत्तर दिया, हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अपनी सेवा में लगाइए। ये सबसे बड़ी प्रार्थना है। जैसे ऐसी प्रार्थना है, देखिए जीव बद जीव भगवान से लड़ाई करके विमुख होकर यहाँ पर आ गया फिर ये प्रार्थना कर रहा है। शुद्र जीव इतनी बड़ी बात है ना, आम भाषा में बोला ना छोटा मुंह बड़ी बात। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें अपनी सेवा में लगा लीजिए, सबसे बड़ी प्रार्थना है। फिर भी हम जानते हैं कि जप करने में हमें कितना संघर्ष होता है, इस प्रार्थना को करने में कितना संघर्ष करना पड़ता है। प्रत्येक साधक को अपने दिनचर्या में से कुछ एक्सक्लूसिव टाइम निकालना चाहिए इस जप के अलावा, कि विग्रह के सामने जाकर वो अपना हृदय खोल सके, प्रार्थना कर सके, या सुबह उठने से बाद या सोने से पहले कुछ समय हमें व्यक्तिगत रूप से भगवान के साथ बातचीत। कुछ भक्त लोग डायरीज लिखते हैं, लिख के प्रार्थना करते हैं। कुछ व्यक्तिगत प्रार्थना होना ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत स्थिरता लाता है और हम अपने आप को ट्रैक रख सकते हैं, हाँ मैं किस ट्रैक पे चल रहा हूँ। तो प्रार्थना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। अब इस प्रार्थना को हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में लगभग 18,000 श्लोक है। कोई आचार्य बताते हैं लगभग 9,000 श्लोक प्रार्थना ही प्रार्थना है। हर अध्याय में आपको प्रार्थनाएं मिलेंगी, हर भक्त ने प्रार्थनाएं की। कुंती महारानी की प्रार्थना है, कृष्ण पितामह की प्रार्थना है और युधिष्ठिर की प्रार्थना है, परीक्षित महाराज की प्रार्थना है, पृथु महाराज की प्रार्थना है, अक्रूर जो प्रार्थना के आचार्य है वंदनम के, वेदों की प्रार्थना है, कितनी ही प्रार्थना है। हर अध्याय में हमें प्रार्थनाएं मिलेंगे। शिव जी ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। तो उन प्रार्थना को अगर हम एनालाइज करें तो सत्य महाराज जी ने एक पुस्तक लिखी है वंदनम। उन्होंने बताया कि प्रार्थना केवल बेगिंग नहीं है, भीख मांगना नहीं है, मैं ये दे दो, नहीं। प्रार्थना के उन्होंने 4 अंग बताए हैं। सबसे पहले हमें गुणगान करना चाहिए। प्रार्थना का मतलब गुणगान भी है, ग्लोरिफिकेशन, भगवान का गुणगान करें। तुलसी महारानी कैसे प्रार्थना शुरू करती है? नमस्ते पुरुषम त्वादे ईश्वर प्रगते परे अलक्ष्य सर्वभूतानाम अंतर्बोध अवस्थितम, कि आप बिल्कुल प्रकृति से परे हैं, आप दिखाई नहीं देते लेकिन आप सब जगह स्थित हैं, भगवान का गुणगान। नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकज आंगरे, भगवान की सुंदरता का गुणगान, गुणगान करना पहला भाग है। फिर बोल रहे हैं उसके बाद ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। हम सुबह से गुरु अष्टकम पढ़ते हैं, पहला ही श्लोक कौन सा है? संसार दावा ननलीण लोका प्राणाय कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरण अरविंद। हे गुरुदेव, आप घने बादल के समान है। मैं तो इस संसार में एक दावानल में पड़ा हूँ जिसका कोई उपचार नहीं है। आप कृपा वर्ष करके इस दावानल को शांत कर रहे हैं। कृतज्ञता कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। तीसरा भाग होता है अपनी शूरता को, अपनी तुच्छता को प्रकट करना कि हम कितने तुच्छ हैं। क्षमा मांगते कि मैं किसी भी योग्य नहीं हूं। योग्यता बिचारे किछु नाही पाए तोमार करुणा सार, शक्ति बुद्धि ही अमी आती दिन कर्मो रे आत्मा सात। अपनी योग्यता कुछ भी अयोग्यता प्रकट करना, ये तीसरा भाग है प्रार्थना का। और चौथा भाग है अपनी इच्छा को प्रकट करना, आप चाहते क्या है। कुंती मारे अंदर इच्छा प्रकट कर रही है कि मैं आपकी तरह इतना आकर्षित हो जाऊं जिस तरह सारी की सारी नदियां गंगा की तरफ आकर्षित, सागर की तरफ आकर्षित होती है। मेरे सारे ये रिश्तेदार जो नाते हैं, जो संबंध हैं झूठे, इस स्नेह पाश को आप काट दीजिए। फिर वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रही है। तो ये चार भाग परम पूजनीय सत्सुरु महाराज जी ने अपने पुस्तक में बताए। श्रील प्रभुपाद जी के एक और शिष्य हैं जिसके द्राविड प्रभु, जो कि बहुत ही शास्त्रों में प्रगाढ़ है, बहुत सुंदर श्लोकों का उच्चारण करते हैं, कभी मायापुर में आपने उनको देखा होगा। उन्होंने भी एक सेमिनार लिया था वंदनम पे। उन्होंने बताया कि वंदनम के तीन भाग होते हैं। सबसे पहले उन्होंने भाग होता है प्रणाम करना, ओबेसेंस, प्रणाम। कितनी प्रार्थना नमः से शुरू होती है ना, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम दे गोर्ति शरणम, है ना। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नमः, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, वांछा कल्पतरु व्यर्च कृपा सिंधु भेव्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अबे नमः शब्द बहुत भारी शब्द है। पद्म पुराण ने बताया गया नमः दो शब्द, मम जो मम है वो सूचक है हमारे अहंकार का, और ना मतलब इस अहंकार की हम अवहेलना करते हैं। यानी कि जो मेरी झूठी पहचान है, ये शरीर, शरीर से जुड़ा हुआ धन संपत्ति सब कुछ आपका, सोचना पड़ेगा नमः करने से पहले। नमो विष्णु बलाय, नमो विष्णु बलाय प्रभुपाद, ये मेरा शरीर, शरीर से जुड़ा हुआ घर, पत्नी, बच्चे, धन संपत्ति सब आपका, वांछा कल्पतरु वैष्णव नमो नमः, हे वैष्णव सब आपका मेरा कुछ नहीं, ये नमः का अर्थ है। सब कुछ समर्पित कर देना, ये प्रार्थना यहां से शुरू होती है। और उन्होंने दूसरा भाग बताया गुणगान करना, और तीसरा भाग बताया अपनी इच्छा को प्रकट करना। ये उन्होंने एक अलग अलग एनालाइज किया है। हम आगे मलान महाराज की प्रार्थनाएं पढ़ेंगे तो उसमें सब हमें भाग देख सकते हैं। अब इस श्लोक का जो महत्वपूर्ण भाग है, हमने प्रार्थना के महत्व को समझा, प्रार्थना कैसे करनी इसको समझा। अब प्रार्थना के लिए बहुत ही विशेष जो उसका महत्वपूर्ण भाग है वो है प्रॉपर मूड, चेतना। चेतना कैसी होनी चाहिए प्रार्थना करते समय, क्योंकि प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, शब्दों की भाषा नहीं है, प्रार्थना हृदय की भाषा है, हृदय से हृदय का भगवान की कृपा को आकर्षित करना है प्रार्थना करके, तो हृदय से निकलने चाहिए। तो क्या मूड होना चाहिए, क्या चेतना होनी चाहिए, तो इस श्लोक के आधार पर, आगे पीछे श्लोक के आधार पर मैंने अपने व्यक्तिगत स्तर पर 6 भाग निकाले। आप भी इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ हटा भी सकते हैं चर्चा के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना का जो पहला अंग हुआ है वह है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। बिना विनम्रता के प्रार्थना का मतलब ही नहीं है कोई, है ना। एक व्यक्ति तड़ी में आए क्या प्रार्थना करेगा, कुछ लोगों को उच्चारण कर सकता है तो भगवान को भी प्रभावित थोड़ी करेगा, तो भगवान की कृपा को कैसे आकर्षित कर सकता है। और विनम्रता में ईमानदारी, सरलता ये सम्मिलित है, कहने की आवश्यकता नहीं है। विनम्रता सच्चाई से शुरू होती है, ईमानदारी से शुरू होती है, सरलता से। एक कपटी व्यक्ति झूठ बोल के भगवान के सामने क्या प्रार्थना कर सकता है। निश्चित रूप से अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो ये उम्मीद रखी जा रही है कि हम सच बोल रहे हैं और जो है हृदय में वही बात कर रहे हैं। भगवान के सामने तो बोलना ही पड़ेगा, और किसी के सामने कहे ना कहे। तो भाई विनम्रता से हमने अपने को प्रस्तुत करना है भगवान के सामने, बात करनी है भगवान से। अगर हमारा हृदय अपनी ही प्रशंसा से भरा हुआ है कि मैं बहुत विशेष व्यक्ति हूं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूं, मेरे ऐसा कोई नहीं, हमसे बढ़कर कौन, तो सामने खड़ा है आपसे बढ़कर वो असल उर्दू है ना, उनके कोई बराबर है ना उनसे कोई बढ़कर है, लेकिन हमसे बढ़कर कौन, इस भाव में खड़े हैं तो क्या प्रार्थना करेंगे। इसलिए ज्यादातर देखा जाता है कि बस जी भगवान के सामने ज्यादा खड़ा नहीं हो सकता,
क्या करें, प्रार्थना कर ही नहीं सकता। तो हृदय प्रशंसा से भरा होगा, खुद अपनी प्रशंसा से भरा हुआ है। तो भगवान का गुणगान क्या करेंगे कि प्रार्थना का एक अंग है गुणगान करना। ऐसा व्यक्ति तब प्रार्थना करेगा जब उसके अहंकार पर ठेस पहुंच रही होगी, उसको लग रहा होगा उसका कॉम्पिटिटर उससे आगे निकाल रहा है, तब आगे भगवान के सामने झुकेगा। लेकिन वो वास्तव में प्रार्थना नहीं। तो विनम्रता बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है प्रार्थना का। हम देखते हैं जैसे सभी आचार्यों की जो प्रार्थना है कितनी विनम्रता से भरी हुई है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चैतन्यमृत में लिखते हैं कि मेरी स्थिति तो मल में पड़े हुए कीड़े से भी गिरी हुई है, अगर कोई मेरा नाम भी ले लेगा तो उसके सारे सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। तो हम सोचेंगे ये तो हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, ये तो दिखावा होगा मैं ऐसी बात करूंगा। तो अगर हम ऐसा सोच नहीं सकते तो कम से कम हमारे हृदय की इच्छा होनी चाहिए कि मैं इस गुण को कल्टिवेट करूं। श्री श्री राधा राधिका रमन, श्री श्री कृष्ण बलराम, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौर निकाय कि मैं इस भावना को अपने हृदय में अंगीकार कर सकूं। इतने बड़े आचार्य भक्तों ढंग करे आमार जीवन सदा पापे रत नाही पुण्य रलेश। भक्तों ढंग क्या करें, मेरा जीवन तो पाप रत है, पुण्य की लेश मात्र भी नहीं है। हम कह पाएंगे हृदय से नहीं, नहीं कह पाएंगे। लेकिन उन दिन कब आएगा जब मैं वास्तव में ये भावना अपने हृदय में ला पाऊंगा। क्योंकि जब तक हमारे मन ये भावना नहीं होगी, अपनी तुच्छता का हमें ज्ञान नहीं होगा, हम भगवान की महानता को नहीं समझ पाएंगे, गुरु की महानता को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए विनम्रता प्रार्थना का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। बिना विनम्रता के प्रार्थना में कोई भी सब्सटेंस नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर बिना विनम्रता के हम प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं आ रही विनम्रता, तो प्रार्थना करें विनम्रता लाने की, या फिर उन आचार्य को मूल को समझने का प्रयास करें। दूसरा अंग है, जैसे कि श्लोक में आया शब्द है एकाग्र मनसा, बिल्कुल फोकस्ड। आप सोचिए उस सीन की कल्पना कीजिए, प्रहलाद महाराज अपने अपने पिताजी के महल में है और नरसिंह भगवान जी बहुत क्रुद्ध अवस्था में है, दहाड़ रहे हैं सिंह की तरह, और सारे के सारे देवता कांप रहे हैं। उनके पिताजी का वध कर दिया उन्होंने, उनके पिताजी वहीं पड़े हुए खून से लथपथ, प्रहलाद और नरसिंह भगवान के नाखून में खून है। आप वो दृश्य देखिए, ऐसे में एक छोटा सा बच्चा प्रहलाद क्या वो विचलित नहीं हो जाएगा, क्या हो क्या रहे, बड़े बड़े देवता घबरा रहे, बोले तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, और वो प्रहलाद बिल्कुल फोकस्ड एकाग्र मनसा, कोई भी घबरा जाएगा। हमारे यहाँ जन्माष्टमी फेस्टिवल होते हैं, भगवान के दर्शन ही सही ढंग से नहीं कर पाते, घबराए रहते हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, सही ढंग से सब कुछ हो जाए, कोई झगड़ा ना हो, सब संतुष्ट जाए, है ना, परेशानी इतनी चिंता रहती है। अभी सुबह के समय फिर भगवान के दर्शन ध्यान पूर्वक कर लेते हैं, दोपहर के समय कभी आए तो खड़े नहीं हो सकते, ये करना है वो करना है ये करना ये करना भाव है। लेकिन प्रहलाद महाराज इतना आसपास शोर शराबा मच रहा है, सब लोग घबराए हुए हैं, प्रहलाद महाराज एकाग्र मन सा, इसलिए प्रार्थना करते समय बिल्कुल एकाग्र मन सा, मैं और भगवान। प्रहलाद महाराज ने इस अवस्था में भी भगवान के चरणों को हृदय में बंद कर लिया, है ना। हम सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की, तो जब हम जब करने बैठे फोकस एकाग्र मन सा, सारे के सारे विचार साइड में रख दो, सारी चिंताएं ये है पीछे से ये यहां रख दो। ये करना हेल्पफुल होता है। एक बार हमने कोई कोर्स अटेंड किया था, ट्रेनिंग प्रोग्राम, उन्होंने बोला आपकी क्या चिंता, हाँ मेरी ये चिंता है, ऐसे किया ऐसे रख, और क्या चिंता, ये भी चिंता है, ये यहाँ सारी चिंता यहाँ रख। अब एकाग्र मन सा, अब मेरे को चैंटिंग करना है। हमारी चैंटिंग क्या होती है, पूरे दिन की योजना बनाना, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अब ये करूंगा फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा, हरे कृष्ण कृष्ण, बैकग्राउंड में चैंटिंग है, पूरी प्लानिंग हो रही है। और कई बार बड़े क्रिएटिव हो जाते हैं, नए आइडियाज आते हैं चैंटिंग करते हुए, क्या आइडिया, ये आइडिया, वो आइडिया, ये आइडिया, या कई बार हमें लेक्चर देना है, पूरी चैंटिंग में लेक्चर ही तैयार कर लेते हैं, हरे कृष्ण देखिए प्रार्थना है, प्रार्थना भगवान को पुकार रहे हैं, राधा रानी को पुकार रहे हैं, मुझे सेवा में लगाओ, क्या कौन प्रार्थना सुनेगा इस तरह हम प्रार्थना करें। तो एकाग्र मन से फोकस्ड होना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। दूसरा तीसरा ये दूसरा अंग था, इसी श्लोक में बहुत ही तात्पर्य में समझा रहे हैं सुसमाहिता,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, पूर्ण अत्यंत मनोयोग से, मोर अटेंटिव देन बीइंग फुली अटेंटिव, समाहित मतलब मनोयोग से सुन लगा दिया, अत्यंत मनोयोग से बिल्कुल घुस गए अंदर, फुली एब्जॉर्ब्ड प्रार्थना में। इसका वह शब्द आता है यहां पे साथ में हृदय इक्षणा, हृदय भी और आंखें भी पूर्ण रूप से भगवान के चरणों पर, यानी खाली आंखें, हृदय भी सुसमाहित पूर्ण रूप से अत्यंत मनोयोग से, यह सुसमाहित ऐसे होने चाहिए हमारी प्रार्थना। हृदय इक्षणा, जब हम दर्शन करते हैं, हम केवल दर्शन करते हैं, हो सकता है आंखें यहां पर हो लेकिन हृदय कहीं और हो, चैंटिंग करते हैं हो सकता है खाली बोल रहे हो लेकिन हृदय कहीं और हो। श्री प्रभुपाद ने चैंटिंग क्या डेफिनेशन दी, चैंटिंग की डेफिनेशन दी, विद लिप्स वी स्पीक, विद ईयर्स वी हियर, एंड विद हार्ट वी क्राई, ये है अटेंटिव चैंटिंग। शब्द होठों से बोले, कानों से सुने और हृदय से रोए, जैसे बच्चा बिलख कर रोता है अपनी मां को पुकारता है, ये हृदय, हृदय क्षण क्षण दर्शन भी कर रहे हैं हृदय के साथ, दर्शन आंखों से नहीं होते हृदय से होते हैं, रियलाइजेशन साक्षात्कार से हम दर्शन करते हैं। अभी परसों ही बहुत बड़ा उत्सव आ रहा है, परसों ही दो तीन दिन के बाद, कौन सा उत्सव है, क्या विशेष होगा इन दर्शनों में, राधारण के चरण दर्शन, सुबह से भाग दौड़ लगे करने हैं राधारण के चरण दर्शन, करके ही रहने, खड़ा रहूंगा वहां पे, वहां एकदम राधारण के चरणों को पकड़ लूंगा दूर से। तो ठीक है, चरण दर्शन जरूर करने चाहिए। एक बार ये सोलिनेस राधारण स्वामी महाराज बता रहे थे एक लेक्चर में, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट महाराज ने दी कि दर्शन का कैसे कर रहे हैं। माने बोला, टू सी इज टू सर्व एंड टू सर्व इज टू सी, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, इसको हमेशा याद रखें। जब भी भगवान के दर्शन कर रहे हो, टू सी इज टू सर्व, भगवान का दर्शन हम अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, राधा रानी के चरण दर्शन है, सबसे पहले मैं पहुंचा, मैं हटा ही नहीं वहां से, प्रभु हटाते रहे मुझे, मैं क्या नहीं वीआईपी कोटा में खड़ा हो जाऊंगा आगे, चिपक गया मैं बस, ये एंजॉयमेंट है, ये अचीवमेंट नहीं है, कर लिए कर लिए कर लिए दर्शन कर लिए राधा रानी के चरण दर्शन नहीं, टू सी इज टू सर्व, भगवान के दर्शन कर रहे हैं यानी कि भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम दर्शन करें तो भगवान को प्रसन्न करना है। चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते थे कहां, गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होके, क्योंकि भगवान गरुड़ जी को जरूर देखेंगे, सबसे प्रिय भक्त है, पीछे मैं खड़ा हूं मेरे पर भी नजर पड़ जाएगी, और वहीं से खड़े होकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं। जब भगवान के दर्शन करें, भगवान का गुणगान करके भगवान को प्रसन्न करना है, अपने आनंद के लिए नहीं, भगवान के आनंद के लिए हमें दर्शन करना है। जब दर्शन आरती होती है तो वो बताया गया, द्वारका में भी भगवान दर्शन देने बाहर आते थे तो सारे के सारे ब्राह्मण सच धज के सामने आते थे, भगवान के खड़े हो जाते थे कि भगवान को हम, भगवान हमें देखेंगे, तो सच धज के आते थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कहीं लोग शॉर्ट्स पहन के आ जाते हैं, ऐसे दातुन चबाते हो, चलो देख के आए भगवान कौन है देखे जरा। तो भगवान के सामने हमारे हम सुसज्जित होकर आए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो भगवान के दर्शन, राधारण के चरणों के दर्शन उनकी सेवा के लिए, इस मूड में हमें करना है कि हमें कृपा प्राप्त हो आपके चरणों की, ये नहीं कि कुछ अचीव कर लिया हमने, है ना। तो ये हृदय, अपने हृदय से देख रहे हैं यानी कि प्रार्थनाएं करने हैं कृपा की याचना के लिए। तो इस ढंग से सुसमाहित पूर्ण मनोयोग से हम हरे कृष्ण महामंत्र की जब प्रार्थना करते हैं तो हम जानते हैं कितने सुसमाहित हम रह पाते हैं, है ना। तरह दिमाग इतना हमारा इनअटेंशन होता है, और भक्तिनाथ ठाकुर इस इन अटेंशन को प्रमाद कहते हैं, प्रमाद मतलब पागलपन, है ना, पागलपन है। तो अगर हमें वास्तव में कृष्ण के प्रेम में पागल होना है तो इस पागलपन से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। तीन प्रकार के इन अटेंशन बताए हैं भक्तिनाथ ठाकुर जी ने, उदासीनता, जड़ और विक्षेप। उदासीनता का अर्थ है कि चैंटिंग करें उदासीन हो गए, ध्यान जा रहा है नहीं जा रहा क्या है, बस 16 माला का जो नंबर है वो खत्म करना है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण खत्म कर दो, किसी तक उदासी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और दूसरा जड़, जैसे ही बैग में हाथ डाला आंखें बंद। मुझे बताया था एक साल पहले हम किसी के गीता मैराथन करने गए थे, दिसंबर के महीने में लोग डेली आते हैं, उस वक्त 11 बजे के आसपास आते हैं, अच्छे नहीं रहते कीर्ति नगर में, बड़ा अच्छा माला बढ़िया सा फर्स्ट कलर का वेरी गुड, तो बहुत पुराने वक्त है, कितनी माला करते हैं, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, भगवान बहुत कृपा है, क्या भाई कितनी माला करते हैं, कह बस माला अभी तक मैं कभी पूरी कर नहीं पाया, लेकिन आनंद बहुत है, एक माला अभी तक वो पूरी नहीं कर पाया, क्यों कहते जैसे ही हाथ डालता हूँ सो जाता हूँ, बहुत आनंद है, उनकी समस्या का समाधान होगी, नींद नहीं आती होगी उनको, तो बहुत उसको रेनिश कर रहे हैं, कई सालों से यही चल रहा है, तो बस ठीक है। तो हम क्या बड़े बड़े भक्त भी हम देखते हैं पुराने भक्त भी हो जाते हैं, जैसे ही माला शुरू करते हैं नींद आ जाती है, तो कैसे, और फिर विक्षेप, डिस्ट्रैक्शन, इतने डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन का अर्थ है अट्रैक्शन फॉर माया, अगर कृष्ण पे हम आकर्षित नहीं हो पा रहे माया से आकर्षित हो रहे हैं, और जब करते समय तरह तरह के आकर्षण आएंगे, कभी प्रसाद का स्मरण होगा, कभी पुराने कुछ दृश्य याद आएंगे, कभी पुराना मित्र याद आएगा, कुछ अलग अलग दृश्य आएंगे, तो ये स्वामी महाराज बताते हैं ये साधक की परीक्षा की घड़ी है, परमात्मा उसको बोल रहे हैं कुछ दृश्य दिखा रहे हैं, अब आपको चूज करना है ये या वो, माया या कृष्ण, जो से बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे, सारे के सारे माया का विचार भाग जाएगा, सारे डिस्ट्रेक्शन भाग जाएंगे, फिर फोकस सुसमाहिता पूरी फुली अटेंटिव, बिल्कुल भी विचलित नहीं होना बिना डिस्ट्रेक्शन के, तभी तो प्रार्थना का आनंद आएगा, तभी तो हृदय दे पाएंगे, तभी तो भगवान आकर्षित होंगे, कोई प्रार्थना ही कर रहा है ऐसे उल्टे सीधे ढंग से, कोई प्रार्थना भिखारी भीख मांग रहा है ऐसे कर रहा है, देख दोनों भैया पैसे जल्दी दो, क्या है भीख मांगते फोन पे बात कर रहे हैं, हाँ बोल क्या कहाँ पे कहाँ पे, वो बोलेगा क्या मांग रहा है भैया कुछ तो, तेरे को भीख मांगने में इंटरेस्टेड ही नहीं है तू, तू भीख कौन देगा, सेवा मांग रहे सेवा दो सेवा दो सेवा, कुछ सोच रहे क्या क्या है सेवा मांग रहे हो, तो फुली अटेंटिव, चाहे हम जितने भी चिंतित क्यों ना हो कुछ भी क्यों ना हो हमें फुली अटेंटिव रहना चाहिए। एक्चुअली एक एक टॉपिक बहुत बड़ा है, समय कम है तो केवल टच करेंगे इसके ऊपर। फिर तीसरा भाग आता है, सॉरी चौथा भाग आता है असहायता, हेल्पलेसनेस। प्रार्थना तभी करेंगे जब हम अपने को असहाय अनुभव कर रहे हैं, अगर असहाय अनुभव नहीं कर रहे क्यों प्रार्थना करूंगा, क्या जरूरत है, बिल्कुल असहाय अवस्था में हमें प्रार्थना करेंगे, बिल्कुल अपने आप को एकदम शुद्ध, जब ये रियलाइजेशन हो जाएंगे, जैसे कि हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जब जलदूत से पहुंचे बॉस्टन में, और उन्होंने देखा है क्या स्थिति है यहाँ की, कैसे मैं इन लोगों को भक्त बना पाऊंगा, तो प्रभुपाद कह रहे हैं मैं उन्हें कृष्णा भराम इनका संदेश आखिर कैसे समझाऊंगा, मैं बहुत अभागा अयोग्य तथा पतित हूं, तभी तो मैं तुमसे वरदान चाहता हूं कि जिससे मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं, क्योंकि मैं अपने बलबूते पर ऐसा करने में असमर्थ हूं। प्रभुपाद ये कह रहे हैं वहां की स्थिति को देखकर अपने आपको बिल्कुल असमर्थ पा रहे हैं कि मैं उनका हृदय परिवर्तन कैसे करूंगा। भक्त उठाकर क्या प्रार्थना कर रहे हैं, एकाकिया मार नहीं पाए मन हरि नाम संकीर्तने, हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि अकेला मैं हरिनाम भी नहीं ले सकता, मेरे में इतना बल नहीं है कि मैं हरिनाम दे सकूं अकेले, मुझे कृपा चाहिए, तो इस ढंग से बिल्कुल असहाय अवस्था। लेकिन होता क्या है कि आप देखेंगे जब, जैसे अभी हम भिखारी का एक उदाहरण याद आ गया, कई बार मंदिर के बाहर जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं तो कई भिखारी बैठे होते हैं लाइन लगा के, और उनके आगे कटोरी रखी होती है, नहीं कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता, भी से वापस लड़ाई कर रहे होते हैं बातचीत कर रहे होते हैं, इसका मतलब पेट भरा होगा भूखे नहीं है, और एक भूखा भिखारी आएगा वो भाग रहा होगा इधर उधर, कुछ तो दे दो बहुत दिनों से खाया नहीं है ना, एक प्यासा अपने पानी के पीछे भाग गया। इसी ढंग से हमें जो कुछ चीज चाहिए और हम बड़े असहाय अवस्था में है, तो निश्चित रूप से हम मांगेंगे, हृदय से मांगेंगे, ठीक है ना, और यह असहाय अवस्था तभी आ पाएगी जब हम पूरे के पूरे जितने भौतिक उपाधियां हैं इससे अपने आप को ऊपर उठाएंगे, क्योंकि जो भौतिक उपाधियां हैं ये हमें एक झूठी सुरक्षा प्रदान करती हैं, है ना, कि तुम ये हो, तुम भैया बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, क्या क्या नहीं है तुम्हारे पास, इतनी बड़ी तुम्हारी फौज है, सब आपकी सुरक्षा के लिए, इतना बड़ा बैंक बैलेंस,
तो जब ये झूठी पदवियां हमें झूठी सुरक्षा प्रदान करती हैं तो हम अपने आप को असहाय नहीं अनुभव कर पाते, तो हम हृदय से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। हम देखते जब किसी परिवार में कोई इमरजेंसी आ जाती है, किसी का संबंधी पिताजी बेटे कोई बीमार पड़ गए या कुछ बहुत बहुत जबरदस्त दुख आ गया, संकट आ गया, तो फिर व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, समाज में उसकी क्या स्थिति है, क्या योग्यता है। वो कहता है जी मैंने हर जगह जाके मत्था टेक लिया, भूल जाता है वो। तो जब काफी साल पहले सुना था कि अमिताभ बच्चन का बेटा बीमार हुआ था कुछ ऐसे, तो वहां गए थे वो तिरुपति बालाजी में जाके, कहीं कहीं नहीं गए। स्वयं अमिताभ बच्चन जब 1980s में उनका एक्सीडेंट हुआ था तो उनकी पत्नी कहाँ कहाँ गई थी, सब भूल गए। जहां भी कोई बोले यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, भूल गए हम कितने बड़े एक्टर एक्ट्रेस हैं। कुछ भी हो जाए बस हमारी प्रार्थना स्वीकार हो जाए। तो जब इमरजेंसी आती है तो व्यक्ति भौतिक पदवियों से अपने आप ऊपर उठ जाता है ना। तो वही इमरजेंसी की सिचुएशन हमें समझनी है, ये इमरजेंसी है, ये मनुष्य जीवन मिला है, पता नहीं कितना तो निकल गया, बर्बाद कर दिया हमने, अब बहुत कम समय बचा है और इतना कुछ करना है, इमरजेंसी है, और मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूं, मैं फालतू के चक्रों में फंसा पड़ा हूं। हमें अपनी तुच्छता का साक्षात्कार ही नहीं होता, हम समझ नहीं पाते हम तुच्छ हैं, असहाय अनुभव ही नहीं करते, फिर कैसे प्रार्थना होगी। तो कैसे करें हम अपने आप को असहाय अनुभव। देखिए हम तरह तरह की कल्पनाएं करते रहते हैं कि मैं ये हूं। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत बुद्धिमान मान रहा है, ये भी कल्पना है, ये कुछ है नहीं। बुद्धिमान होता है तो कृष्ण के शरण में भी होता, तो ये भी तो कल्पना है, अपने आपको समझना कि बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं। तो इसी कल्पना शक्ति का हम सही ढंग से उपयोग ना करें, सही ढंग से उपयोग क्या करें कि मैं बहुत तुच्छ हूं, अपने को बड़ा मानना ना, एक बार तुच्छ मान के देख लो, देखो किसमें आनंद ज्यादा मिलता है, कितने जीवन बिता दिए इसी कल्पना में कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। अब ये कल्पना करके देखें, मान ले लो, इमेजिन करें कि बहुत तुच्छ हो, नगण्य हो, एक एरियल वर्जन ऊपर चढ़ के देखें इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड में मैं कहां पे हूं, मैप करो अपने आप को, कहां बैठा हूं मैं, कहीं भी नहीं, दिखाई भी नहीं दूंगा मैं कहां पे हूं, इतना नगण्य, इतना नगण्य। अगर मैं 6-7 फीट के शरीर को भी अपना अस्तित्व मानता हूं और अगर बाल के अगर बाकी 10 हजार का हिस्सा तो पता नहीं कहां हूं। अगर मैं समझ मेरी पहचान 7-6 फीट का शरीर है, तब भी इस पूरे भौतिक सृष्टि में मैं कहीं दिखाई नहीं दूंगा, इतने बड़े बड़े पहाड़, इतने बड़े सागर, इतने बड़े बड़े सब कुछ, उसके पीछे 7 फीट का आदमी कहां पे है। और वैसे तो मेरा आकार 7 फीट का नहीं है, बाल के अग्रभाग का 1/10,000वां हिस्सा वो कहां है, कहीं भी नहीं है। अपनी तुच्छता को समझने का प्रयास करें, बिल्कुल असहाय। रोज सुबह जब उठते हैं पेट पे प्रेशर लगता है, हमें रियलाइज करना चाहिए कितना असहाय हूं मैं, जो चीज अच्छी लगती है थोड़ा ज्यादा खा लूं तो एसिडिटी हो जाती है, बीमार पड़ जाता हूं, सर्दी शुरू हुई अपने को ढका नहीं तो बीमार पड़ गया, असहाय। हर स्थिति में हम असहाय हैं, लेकिन फिर भी कंप्यूटर में प्रोग्राम बना के हाथ में रिमोट कंट्रोल रख के हम सोचते हैं बहुत पावरफुल है, कुछ नहीं है, हम बिल्कुल हेल्पलेस। इमेजिन कर सकते हैं, देखिए हम किस अवस्था में हैं, और फिर हम भगवान के सामने आकर प्रार्थना करें। ये कौन सा था, हम पांचवा, क्षमा करें, ठीक है, पांचवा अंग है। यहां प्रभुपाद कह रहे हैं कि पहलाद महाराज सुसमाहित हो पाए क्योंकि वे पूर्ण रूप से सेवा में लगे रहते थे। इसलिए हमें अगर प्रार्थना वही व्यक्ति कर सकता है जो सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित है, सेवा करने नहीं भगवान के सामने कुछ आंसू बहा दिए, क्या मतलब इसका, नाटक कर रहे हो। प्रभुपाद ने प्रार्थना क्यों की, मां के लिए भागवत कि प्रभुपाद ने इतना संघर्ष किया था अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, और फिर वहां गए तो देखा ये स्थिति है, फिर प्रार्थना निकली कि आप मेरी सेवा, मेरी मदद कीजिए, क्योंकि सेवा ही नहीं कर रहा, संघर्ष ही नहीं कर रहा, वो प्रार्थना कैसे कर सकता है। तो खूब सेवा करनी चाहिए, फर्स्ट ट्राई एंड देन क्राई, ट्राई किया नहीं क्राई कर रहे हो, इफ वी जस्ट क्राई विदाउट ट्राई दैट मीन्स वी आर जस्ट ट्राई, ड्राई रहेंगे, और खाली ट्राई करेंगे क्राई नहीं करेंगे तो फ्राई हो जाएंगे, है ना, ड्राई क्राई ट्राई फ्राई, छोड़िए
ये कोई शास्त्रों की बात नहीं है। तो इसलिए हमको ये पूर्ण रूप से सेवा में लगना है। श्रीला प्रभुपाद जी एक भागवत ठाकुर बता रहे हैं, वॉलंटरी एंडेवर इज द ओनली क्वालिफिकेशन फॉर स्पिरिचुअल परफेक्शन। स्वेच्छा से किए हुए प्रयास ही आध्यात्मिक योग्यता का एकमात्र, आध्यात्मिक पूर्णता का एकमात्र योग्यता है। जब तक कोई स्वेच्छा से प्रयास नहीं कर रहा, उसको आध्यात्मिक सफलता नहीं मिल पाएंगे। तो प्रयास करना बहुत जरूरी है। अभी दामोदर मास शुरू होने वाला है, यशोदा माता ने कितने प्रयास किए कृष्ण को बांधने के लिए, तब कृष्ण ने उन पर कृपा की। तो केवल प्रार्थना हम करते रहेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, सेवा करने पड़ेंगे। एक छोड़िए, एक जो एथलीट होता है ना, भागता है, प्रैक्टिस करता है, उसका भी बड़ा जबरदस्त मॉर्निंग प्रोग्राम होता है। वो भी सुबह उठ जाता है 3:30-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, खूब दौड़ता है, एक्सरसाइज करता है, सही खुराक लेता है, स्ट्रॉन्ग साधना, उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग साधना है। फिर वो प्रार्थना करता है, फिर उसको गोल्ड मेडल मिलता है। वो खाली प्रार्थना करते रहे और कोई साधना ना करे, भागो ना करे, फिर थोड़ी सा गोल्ड मेडल मिलेगा। हम रोते रहे भगवान के सामने आके, आए मुझे प्रेम दे दो, प्रेम दे दो, प्रेम दे दो, बहुत दुखी हूँ, प्रेम दे दो, माला सही ढंग से करनी नहीं, कोई सेवा करनी नहीं, हाय मुझे प्रेम दे दो। अरे भगवान, अरे जो बताया वो तो करो। तो इसलिए सेवा में लगना पड़ेगा, पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा। तत्न्यस्त, देखा, पूर्ण रूप से अपने को समर्पित किया, तब जाके प्रार्थना में शक्ति आती है, फिर भगवान सुनेंगे। तो इसलिए सेवा में होना अति आवश्यक है। छठा है, यहां बताया प्रेम का गद गया, प्रेम से विमलित होकर उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, गदगद हो गया, प्रेम से उन्होंने बोला, उनकी वाणी को बोले नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए से प्रार्थना प्रेम से होनी चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी 1975 में वर्ल्ड टूर पे निकले थे, अमेरिका में कई जगह गए, पहले वो वेनेजुएला गए, फिर मियामी गए, उसके बाद अटलांटा में पहुंचे February 1975 में, और हर जगह उनको बॉम्ब इकाई के विग्रहों में दर्शन हो रहे थे, और देख रहे थे बॉम्ब इकाई की कितनी कृपा है, कितने ही भक्त बन रहे हैं। जब अटलांटा में पहुंचे 75 में, फिर से उन्होंने बोले था कि दर्शन हुए, और फिर प्रभुपाद को लगा कि भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं, तो प्रभुपाद ने वो गीत गाया लोचनदास ठाकुर जी का, परम करुणा पौदो ही जन नेताई गौर चंद्र सबावतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। प्रभुपाद ने पूरा भजन गाया, फिर भजन को एक्सप्लेन करने लगे, एक्सप्लेन करते करते प्रभुपाद पूरे एक्सटेसी में चले गए। प्रभुपाद ने आंखें बंद कर ली और प्रभुपाद की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो एकदम शांत, सारे शीशे बैठे थे, क्या करें, सब देखते रहे प्रभुपाद को, और फिर सबने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। फिर प्रभुपाद वही चेतना में आए और थैंक यू वेरी मच कहके उठ के चले गए। प्रभुपाद प्रेम से गदगद हो गए, आगे बोले नहीं पाए, इसलिए जब से प्रहलाद महाराज प्रेम से गदगद हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे हम तो प्रार्थना करने जाएंगे, हम तो प्रेम से गदगद होने रहे, फिर कैसे प्रार्थना करेंगे, नकल तो मार नहीं सकते, है ना, सही जा रहे हैं कुछ नकल मार लेंगे, तो क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, जो पूर्ववर्ती आचार्यों की प्रार्थनाएं हैं उन्होंने प्रेम से गदगद होकर बोली है, उनका हमें उच्चारण करना चाहिए। पूर्ववर्ती आचार्यों की भागवत में प्रार्थना है, आचार्यों के भजन है, ये बहुत सुंदर उपहार है हमारे लिए। इन प्रार्थना का उच्चारण करके हम उनकी भावनाओं के संपर्क में आते हैं और अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है उत्तम श्लोक, यानी कि सुंदर सुंदर श्लोकों द्वारा उनकी अर्चना की जाती है, उनकी वंदना की जाती है। और मजे की बात क्या है कि ये जितने भी आचार्य में प्रार्थना करते हैं, भगवान खुद उनको हृदय से प्रेरणा देते हैं प्रार्थना करने के लिए। भगवान ही हृदय में बैठ के उनको प्रेरणा देने की, ये प्रार्थना करो, फिर वो प्रार्थना कर रहे हैं। ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हो गए, ध्रुव महाराज घबरा के क्या करो, भगवान अपना शंख चौटन सारा है, पूरा ज्ञान प्रकाशित हो गया, सुंदर सुंदर प्रार्थना है। अभी प्रहलाद महाराज ने प्रणाम किया, भगवान ने उनके सर पे हाथ रख दिया, प्रहलाद महाराज प्रार्थनाएं कर रहे हैं। भागवत के 3rd स्कंध के 9वें अध्याय में भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला कि अब सृष्टि की रचना करो, ब्रह्मा जी घबरा गए, क्या करूंगा सृष्टि की रचना, सृष्टि की रचना, अरे भाई क्या क्या है इसमें, बोले सब, और फिर मैं करूंगा, मुझे रजोगुण का प्रभाव हो जाएगा। उन्होंने बहुत प्रार्थना की, बहुत सुंदर प्रार्थना है। जब भी हमें कोई सेवा मिले और सेवा करते हम घबरा रहे हों कि मैं कैसे कर सकता हूं, तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना को पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर प्रार्थना है, बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद के। तो बहुत प्रार्थना करें कि मैं इस योग्य नहीं हूं, कैसे कर पाऊंगा। तो प्रार्थना जब समाप्त हो जाती है तो तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 38वां श्लोक है। तो भगवान ने बोला, ये तुमने सुंदर प्रार्थनाएं की है मेरा गुणगान करते हुए, ये भी मेरी अहेतुकी कृपा है। ये प्रार्थना भी मैंने तुम्हें बताई है तभी तुम कर पा रहे गुणगान। तो इसलिए उत्तम श्लोक भगवान की उत्तम उत्तम प्रार्थनाएं जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने की है, उसको हम उनका स्मरण करके, उनकी चर्चा करके, हम उनकी भावनाओं के संपर्क में आ सकते हैं और अपने हृदय को हम शुद्ध कर सकते हैं। प्रत्येक भक्त को ये शोक करना चाहिए कि मैं हृदय से प्रार्थना नहीं कर पाता। इतना सुंदर भगवान ने हमें अवसर प्रदान किया है, तो हमें ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं अपने हृदय से प्रार्थना कर सकूं। जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों के जो लिखे हुए वैष्णव संगीत है, जो भागवतम की सुंदर प्रार्थनाएं हैं, इनका हम स्मरण कर सकते हैं, इन पर चर्चा कर सकते हैं, इनको हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं ताकि हम इसको अच्छे ढंग से और समझ सकें। तो ये कुछ इस पर हमने चर्चा की। और देखिए जैसे कि रूप गोस्वामी जी ये बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं भगवान के सामने हमें जाकर क्या बोलना चाहिए कि मैं मूर्खों में सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, आप सब बुद्धिमानों में सबसे बड़े बुद्धिमान हैं, मेरे हृदय में हर प्रकार की पापमय इच्छाएं हैं और आपका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है। मैं हमेशा आपके नाम का जप नहीं करता, कभी कभी जप करता हूं, वो भी इतने अपराध करता हूं, फिर भी मैं आपके चरणों की शरण लेना चाहता हूं, कृपया करके मेरा तिरस्कार मत कीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए। देखिए ये प्रार्थना हमें करनी है। जीव गोस्वामी बात बताते हैं कि एक साधक को अपने हृदय में प्रेम विकसित करने के लिए उन्होंने क्रम बताया है कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। ये भागवतम के 11वें स्कंद के 2वें अध्याय के 36वें श्लोक के तात्पर्य में इसका वर्णन आता है, अंतिम पैराग्राफ में, आप इसको जाके देख भी सकते हैं। बोले कि कैसा क्रम होना चाहिए, पहला बता रहे हूं, पापपूर्ण इच्छाओं से उत्पन्न दुख प्रदर्शित करके कृपालु भगवान मुझ पर दया कीजिए। कि हम बद्धजीव ये भी नहीं जानते हैं कि पापपूर्ण इच्छाओं से दुख उत्पन्न होते हैं, मैं इसको भी रियलाइज नहीं कर पा रहा, मेरे हृदय में इतनी पापपूर्ण इच्छाएं हैं, ये मुझे दुख देंगी, हमें इतनी हमारे में इतनी अज्ञानता, हम इसका भी साक्षात्कार नहीं कर पा रहे। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे कृपा दिखाइए कि पापपूर्ण इच्छाओं से कैसे दुख होंगे, आप प्रार्थना कर रहे हैं। फिर अगली प्रार्थना वो कर रहे हैं, अज्ञानी व्यक्तियों को इंद्र तृप्ति के पदार्थों में अटूट स्नेह होता है, इसी प्रकार मैं आपका सदैव स्मरण करूं जिससे वही अनुरक्ति जो आपके साथ की जाती है कभी मेरे हृदय को ना छोड़े। जैसे एक कामुक व्यक्ति की इंद्र तृप्ति के प्रति रुचि रहती है, वैसी रुचि मेरे आपके प्रति हो जाए। फिर तीसरे क्रम में बता रहे हैं जो बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना है रूप गोस्वामी जी की, जिस तरह युवतियों का मन किसी युवक के बारे में सोचने में आनंदित होता है और युवकों का मन किसी युवती के बारे में सोचने में रमता है, उसी तरह मेरा मन आप में रमे। और अंत में बता रहे हैं, पुण्य और पापों के लिए मुझ में जो भी अनुरक्ति हो वह अनुरक्ति पूर्ण रूपेण आप में लगे। तो कुछ प्रार्थना है जिनके हम सहायता ले सकते हैं और भी भागवत में सुंदर प्रार्थना है। तो इस प्रकार हम लोग एक प्रेफुल मूड विकसित कर सकते हैं और प्रतिदिन हम जो 2 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, ये बहुत सुंदर अवसर है भगवान से संबंध स्थापित करने का। अगर हम विनम्रता के भाव को विकसित करें, उससे पहले हम सभी वैष्णवों को प्रणाम कर सकते हैं, गुरु और आचार्यों को प्रणाम कर सकते हैं, अपनी तुच्छता को समझ सकते हैं, विनम्रता का भाव अनुकूल करके पूर्ण रूप से एकाग्र मन से सुसमाहित होकर जो तरह तरह के विक्षेप आए, जो आलस आए, उसको त्यागने का प्रयास करें, संघर्ष करें सुसमाहित रहने के, और फिर बहुत ही असहाय अवस्था में, और फिर जो प्रतिदिन हम सेवा करते हैं उसे पूर्ण रूप में एब्जॉर्ब होकर और आचार्यों के जिस उन्होंने भगवान का गुणगान किया है उसका स्मरण करते हुए हम बहुत अच्छे ढंग से भगवान को पुकार सकते हैं। तो ये प्रार्थना पर था, इसके ऊपर बहुत जीवन चर्चा की जा सकती है, ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन आज के श्लोक में इतना ही पर्याप्त है। हरे कृष्ण। किसी का टिप्पणी है?
बहुत ऑटोबायोग्राफिकल था, कैसा लग रहा था? दो चीजें मुझे क्लैरिफाई जैसे आपने एलिमेंट्स बताए प्रेयर में कि ये चीज़ें जैसे ग्लोरीफाइंग एटीट्यूड या छः एलिमेंट्स, अभी बात के मुझे सुन के जो ऐसा लग रहा था कि ये इसके लिए बहुत सदम ऊंची है, मतलब दो बिल्कुल मुझे लग रहा था डायमेट्रिकली अपोजिट चीज़ें जो मेरे साथ आउट ऑफ स्नैचिंग व्हाट आई डू, मुझे नहीं मालूम काफ़ी लोगों के साथ होता होगा कि जब एक्सट्रीम नेसेसिटी है, जब वाकई में ऐसा हो जाता है कि आप और कुछ काम नहीं करने वाला, उस वक्त तो वो ड्यूटीज के सामने आप खड़े हो जाते हो, मैं तो खड़ा हो जाता हूँ, फिर काम हो ही जाता है। पर जब कोई काम नहीं है, इतना इतनी अर्जेंसी नहीं है, उस वक्त खड़े होके ग्लोरीफाई करना, स्टार्टिंग में जैसे आपने बताया उससे पहले ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, इतना सदगुण तो
फिर होता ही नहीं है। हाँ, वही बात है, प्रकृति की अहंकार अभिमुखात्मक कर्ता हम इति मान्यते, अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को कर्ता मान रहे हैं। जब हमारे सारे प्रोजेक्ट सफल हो रहे हैं, हमारी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, तो फिर जरूरत क्या
है? क्योंकि जब आप आरती है वो या तो एक्सट्रीम रजोगुण है, एक्सट्रीम तमोगुण है, तो दैट गिव्स मोर इम्पेटस टू प्रे रादर देन एनीथिंग एल्स।
लेकिन अगर हम एक्चुअली प्रार्थना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है भगवान के संपर्क में रहने का, अपने आप को सतगुण में लाना आवश्यक है, निश्चित से हमें मदद करेगा। तो एक तरीका जैसे मैंने बताया कि प्रतिदिन, चलो ठीक है टीटी के सामने नहीं आ सकते, अकेले अपने कमरे में कक्ष में भी कहीं पे हम 5-10 मिनट निकाल के भगवान से कुछ संपर्क तो करें। प्रैक्टिस ये बहुत हेल्पफुल होता है कि कुछ हम कुछ समय निकाल कर अपने को कुछ समय दें और उसमें हम अपने कुछ कमियां या कुछ अच्छा हुआ उसमें भगवान को धन्यवाद। ये साधना भक्ति है, सब कुछ तुरंत नहीं हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा ही नहीं, स्पॉन्टेनियस हम गुणगान कर नहीं पाएंगे, स्पॉन्टेनियस अपने आप को हेल्पलेस समझ नहीं पाएंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते 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 हम इस स्तर पे आ जाएंगे। यस हाय गुरु, हाँ एक पर्ची आई है कि प्रसाद में लेट है तो 10 मिनट में ले सकता हूँ।
जब प्रार्थना करने के लिए योग्यता पहला है कि दैन्यता, दैन्यता दैन्य आत्म निवेदन भद्रे वर्ण अवश्य रखते कृष्ण विश्वास से पात्र। लेकिन उसका पहले जो हेल्पलेसनेस वो क्रिएट होता है ना, यदि कोई व्यक्ति सुकृतिवान नहीं है तो प्रार्थना नहीं कर सकता।
कोई व्यक्ति
सुकृतिवान नहीं है, पुण्यात्मा नहीं है, चतुर्विधा भजन देवाना सब अर्थ, ये अवस्था में वो देखेगा कि मेरे आरती को दूर करने वाला और है नहीं कोई, ना डॉक्टर है ना मेडिसिन है, मेरे रिश्तेदार है। तो जब हेल्पलेसनेस फील करेगा तो उस समय उसका शरणागति आएगा निश्चित रूप से, और कोई नहीं है उसके हेल्प करने वाला। सड़ांग शरणागति वही में जहारा तहारा प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार, तो उसी समय वो प्रार्थना करने के लिए वास्तव में योग्य बन सकता है, और फिर उनकी प्रार्थना वो भगवान।
बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, भगवान बताते चतुर्विधा भजन्ते मम येन सुकृतो अर्जुन, जिसके पास सुकृति होगी वही भगवान की शरण लेगा, पापी व्यक्ति तो कुछ और करेगा, वो दुख में होगा तो कुछ और करेगा, दुष्कृत है। तो अच्छा पॉइंट है प्रभुजी का, बहुत सुंदर पॉइंट है, सबसे पहले सुकृति होनी चाहिए भगवान के पास जाने के लिए। धन्यवाद।
और ये जो शब्द है प्रेम गदगदया वाचक, कभी कभी रोग की अवस्था में वा मृत्यु की अवस्था में हमारी भी वाणी रुक जाती है, कब बात किसी से तो हमारे एक्सप्रेशन नहीं होता है, लेकिन प्रेम से कभी कभी हमारा वाणी अवरोध हो जाता है, तो एक दूसरी स्थिति है। थोड़ा सा कल्पना करते ना, कपड़ा कंठा करो ये दैन्यात्मा, लेकिन प्रेम जिसको प्राप्त हुआ है भगवान के दर्शन से, भगवान की किसी प्रकार फीलिंग से, ग्रेटिट्यूड से, उसमें वाणी रुक जाता है, परंतु उनका जो प्रेम है वो एक्सप्रेस होता है, चाहे मूर्छा अवस्था में हो वा आंसुओं के रूप में हो वा रोमांच के रूप में हो, ये तीन इसके लक्षण है। तो ये सब अवस्था है कि पहले उनका हृदय पिघल गया है और आंसुओं से भर गया। जैसे युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से जा रहे हैं द्वारका, उनको देख करके मतलब उनका ग्रैटिट्यूड फीलिंग हुआ, कितने कितने उपकार किए हैं, तो उनका आंख में इतने आंसू भर गया, तो फिर सोचे कि आंसू मेरा अवरोध है भगवान के सुंदर दर्शन में, उन्होंने तुरंत पोस लिए। तो ये है आंसू ये करना, लेकिन जब तक अनर्थ है तो हमारा हृदय पिघलेगा नहीं, कितने हम नाम भी लें तो नहीं हो पाएगा।
लेकिन अर्थों को आगे पढ़ने के लिए प्रार्थनाएं बहुत सहायक होंगी, साधना करते हैं,
लेकिन इसका पहले एकाग्रता चाहिए। जैसे सोनोगाती रोशी ने बैठ गए थे तो उन्होंने पूछे कि क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा धर्म क्या है, कर धर्म सुनिश्चितम पुंसा विश्वक्सेन तथा सूर्य न उत्पादे रति प्रति समय वही केवल। कहते यदि इसके प्रति आपका रति नहीं है तो श्रम है, तो कैसे रति उत्पन्न होना चाहिए। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सततं प्रति स्वतज्ञं कृतितव्यस्य ध्येय बुद्धस्य नित्यता। तस्मात् एकेन मनसा मतलब मन को एकाग्र करके श्रवण करो, फिर ध्यान करो, पूजन करो, ये तब फिर सफलता हो। तो समाहित का मतलब है मन को पहले फिक्स करना चाहिए भगवान की सेवा, अदरवाइज ये सारे कार्य हमारा सिर्फ अनर्थ का एक्सप्रेशन होगा। उस सलाह में
धन्यवाद।
हरे कृष्ण।
प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आपने बोला कि लास्ट में इच्छा अपनी व्यक्त करनी चाहिए प्रभु भगवान जी के आगे, लेकिन हमें तो खुद भी हम असमर्थ में यही नहीं पता है मांगना क्या चाहिए, क्या जो हमारे साथ हो रहा है वो अच्छा है बुरा है, तो इच्छा हम क्या बोले भगवान जी को। कोई मम्मी बीमार है क्या उनको ठीक कर दें, कोई पेमेंट क्या वो लें, या भगवान अपनी सेवा में लगाएं, या कुछ भी ना मांगे, बस सिर्फ समर्पित हो जाए और भगवान को पता है सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली होगा, तो वो इच्छा जो आपने बोली वो क्या है।
ये दूसरा पार्ट था एक्चुअली, डिस्कशन बहुत बड़ी डिस्कशन हो जाएगी, क्या इच्छा व्यक्त करें। किसी घर में कोई बीमार है, बिजनेस में पेमेंट रुक गई है, कर्जा बढ़ गया है, घर में झगड़े हो रहे हैं, क्या मांगे भगवान, ये कर्जा दूर कर दो, ठीक कर दो बीमारी, क्या मांगना चाहिए। और कई बार भक्तों के जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं, भक्त बीमार पड़ गए, वो खुद भी प्रार्थना कर रहा है, सारे भक्त मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, वो बीमारी ठीक नहीं हुई, हुआ ना कभी सर सारे बोलते हैं आपके साथ ऐसा हो गया, आप और जब उसका इलाज चल रहा होता है आप तो ठीक हो ही जाएंगे, भगवान आपकी रक्षा करेंगे, नींद की रक्षा बोलो, सबने खूब प्रार्थना की, एक्स्ट्रा माला की उसके लिए, गोवर्धन परिक्रमा की, क्या क्या नहीं किया, नहीं ठीक हो गया, तो फिर क्या क्या मांगे। बहुत अच्छी बात है। तो वास्तव में सबसे जो हमें डरना चाहिए भक्त को कि भगवान का विस्मरण ना हो, बस तो यही मांगना चाहिए, जैसे मर्जी परिस्थिति हो भगवान हम आपको हमेशा स्मरण करते रहें, आपकी सेवा में लगे रहें, ये सबसे उच्चतम प्रार्थना है। लेकिन ये ईमानदारी रखनी पड़ेगी, हम बहुत परेशान हैं, बहुत ही परेशान हैं बिजनेस के उसमें, फिर हम क्योंकि प्रार्थना मालूम ना हृदय व्यक्त करना, हृदय व्यक्त कर सकते कि यदि आप चाहें तो ये जो मेरे जीवन में बाधा आ रही है आपकी सेवा में, यदि आप चाहें तो उसको ठीक कर सकते हैं ताकि मैं आपकी और अच्छे से सेवा कर सकूँ। लेकिन फिर तैयार रहना है, क्योंकि भगवान दो अब दो तीन ऑप्शन हो सकते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन लें, सारी सारा का सारा कर्ज उतर जाए, फटाफट कोई ऊपर से कोई पेमेंट आ जाए, बढ़िया सब ठीक हो जाए, और बड़े ठाकुर जी की कृपा हो, सुन ली प्रार्थना, ये भी हो सकता है। दूसरा है कि बिल्कुल सुनी नहीं कई बार तो हालत बहुत खराब हो जाती है, कई बार देखा गया लोग हमें बुलाते हैं कई बार आइए, कई बार एक बुलाया किसी ने कि पिताजी बहुत बीमार है, पर आइए जरा देख जाइए थोड़ा अच्छा हो जाएगा, देखने गए अगले दिन हरी बोल हो गया तो बिजनेस खोलते पहले आइए प्लीज आप चरण कदम डालिए अपने चरण, वो डालते हैं बिजनेस चलाइए। एक बार अदालत महाराज बता रहे थे कि वो गुजरात में कहीं गए, तो फ्लाइट से उतरे तो उस फ्लाइट में क्रिकेटर्स भी थे, इंडियन टीम थी, तो अजय जडेजा एक क्रिकेटर था, तो उसने देखा महाराज का बहुत वेलकम हो रहा है, उसमें भी बड़ी पर्सनैलिटी है, तो उन्होंने महाराज का सम्मान मान उठाया, बड़ी सेवा की, और उस समय उस पर केस चल रहा था, मुझे शायद लाभ मिल जाएगा, उसके बाद उसको पूरा एक्सपेल कर दिया तो कई बार बिल्कुल उल्टा हो जाता है, जो प्रार्थना करते हैं उसे उल्टा उल्टा रिजल्ट मिलता है, और जो भक्त है बिल्कुल मोहित निगम क्या क्या करें। तो कई बार भगवान वास्तव में यही है कि बच्चा पिताजी से कुछ मांग रहा है तो पिताजी नहीं दे रहे, तो हमारे लिए जो अच्छा है भगवान वही करते हैं, ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो सेफ यही है प्रार्थना के लिए कि हम सेवा ही मांगे। प्रभा उदाहरण देते हैं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जर्मन में जो उनके फौजियों की पत्नियां थी वो प्रार्थना कर रही थी कि हमारे पति सुरक्षित आ जाएं। जो ब्रिटिशर्स थे उनकी पत्नियां भी प्रार्थना कर रही थी कि हमारे पति सुरक्षित आ जाएं। अब दोनों सुरक्षित वापस आ नहीं सकते थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो ये प्रार्थना कैसे स्वीकार करेंगे भगवान, है ना। तो इस तरह की प्रार्थना करना भौतिक लाभ के लिए, बीमारी ठीक हो जाए, धंधा ठीक हो जाए, ये ठीक प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना तो यही है कि जैसे मेरी भौतिक परिस्थिति रहे मैं आपकी सेवा में लगा रहूं, आपको खोलूंगा। लेकिन हमारा ये स्तर नहीं आ रहा तो मैं भगवान के मन से जो आपकी इच्छा है करो, मेरी ये इच्छा है कि आप इसको ठीक कर दो, लेकिन आपसे मैं दूर ना। हाँ 20,800
वो भी भगवान के पास से पत्र लिखे थे प्रार्थना के पत्र, कहा कि प्रभु हम आपके भक्त हैं फिर भी कैसे हमको इस प्रकार जरा सा अपने खरीद करके हमको डाला है। फिर बाद में चार श्लोक की बात करते नहीं है, जरा सा हमको कारागार में नहीं डाले हैं, हम अपने कर्मों रूपे, क्योंकि हम सब राजा बन गए थे, बहुत घमंडी हो गए थे, धन की मत बढ़ गया था, इसलिए इसको आप नष्ट करने के लिए आप ऐसे जरा सा कारागार बने ताकि हम सुधर सके। तो फिर कहे प्रभु हम तो इतना ही चाहते हैं कि आप एक बार हमको दर्शन दे दीजिए, तो यही हमारी भक्ति की कारण है और कुछ नहीं। ऐसे हम जो बंधन में पड़े हैं और जो जिस कारण से हम दुख कष्ट भोग रहे हैं, इतने दिन से खाए नहीं थे वो लोग राजा होकर, लेकिन एक अभिलाष था जिस कारण से वो जेल से छूट गए और पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो गया, फिर सब वैभव प्राप्त हो गए, फिर भगवान की परम मुक्ति प्राप्त हो गई। एकमात्र इच्छा रखे थे भगवान कृष्ण हमको दर्शन, यही निवेदन करना।
वो भी कामो सर्व कामो मोक्ष कामो धारती तीव्र भक्ति योग्य ने जय पुरुष, चाहे आपके हृदय में कोई कामना नहीं है या सब तरह की भौतिक इच्छाएं हैं या मोक्ष की कामना है, करना क्या चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तीव्रता से करना चाहिए, ये बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, प्रेम नंदे।